Om Shanti. Good morning. आज बाबा ने कई बारी याद दिलाया है कि बाबा ने किसको कहा नहीं है कि घर छोड़ के यहाँ आके बैठो। बाबा तो हरेक को कहता कि जीवन कमल पुष्प समान बनाओ, घर गृहस्थ में रहते भी अपने जीवन को श्रेष्ठ ऐसे बनाओ जो बाहर के कोई छींटे न पड़े, आत्मा बिल्कुल पावन बनती जाए। और दूसरा, बाबा ने बताया है कि कारण क्या है माया का थप्पड़ खाना। माया आती है और हम उसको भगाते हैं, वो तो ठीक है, परंतु कई बार ऐसे कुछ हो जाता है जो कहेंगे कि माया का थप्पड़ लग गया। उसका कारण देह अभिमान, इतना आत्म स्मृति पर ध्यान नहीं दिया तो माया को चांस मिल जाता है। बाबा ने स्ट्रॉन्ग भाषा यूज की है कि माया के पंजे में फंस जाते और फिर कुछ ऐसे नाम रूप में भी फंस जाते जिसकी फिर सजा बहुत कड़ी है। आज बाबा ने सजा को भी याद किया है, स्ट्रॉन्ग मुरली है, और जब स्ट्रॉन्ग मुरली होती तो बहुत करके मैंने देखा है कि शॉर्ट मुरली होती। बाबा को जो कहना है बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देते, फिर बाकी बच्चे जैसे समझे। आप ये सोचो कि बाबा स्ट्रॉन्ग मुरली क्यों चलाते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बाद में पश्चाताप न हो। अभी ही हमारे सामने बाबा हर बात क्लियर बताते ताकि अभी से ही हम सावधान रहें। और शॉर्ट मुरली है तो फिर मम्मा की भी दो अलग अलग पैसेजेस हैं, वो भी सुनेंगे। ये है 24 तारीख की मार्च महीने की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप के मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती, बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में हंस पड़ती है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। और गीत, न वो हमसे जुदा होंगे, न दिल से ये उल्फत मिटेंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। कब? जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्कर लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कलप पहले माफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है, उसके पेटल्स के ऊपर कुछ वैक्स जैसे लगा हुआ है नेचुरल, जिसे पानी का बूंद आता भी है तो बह जाता, टिकता नहीं है, कुछ असर नहीं होता। बाप कहती है, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने मैं आया हूं। पतित पावन सर्व का सत्कृति दाता एक ही है। कल भी बाबा ने ये बहुत अंडरलाइन किया था कि एक ही सत्कृति दाता सर्व आत्माओं को सत्कृति देते, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कलप से हम सीरी उतरते आए, 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्कर पूरा कर जब फिर जर जरीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता। वो घड़ी जबकि और किसका वश नहीं चलता और किसी में ताकत नहीं शक्ति नहीं जो उसका कुछ कर सके, बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं, ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा भी कहेंगे ड्रामा, आत्मा नीचे आती गई। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं, और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो ताकि सबको शांति और बाबा के बच्चों को जो पहचानते हैं उनको सुख। सत्युग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाबा क्यों कहते हैं जीते जी? क्योंकि भक्ति में ये समझते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भगवान मिलेगा। वैसे और धर्मों में भी, न सिर्फ भारत के धर्म में परंतु और धर्मों के बाद भी यही सोचते कि शरीर यहां छोड़ा फिर वहां ऊपर भगवान से मिलेंगे, परंतु मिलन तो अब हो रहा है। तो जीते जी बाप के बने हो। बाप कहती है, आज बाबा का कहना कई बार अंडरलाइन बाबा कर रही हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा ही क्या कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे घर गृह में रहते भी ईश्वरीय सेवा करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता, बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। किसको संकल्प है क्या कि हम घर ग्रस्त छोड़ के यहां ही बैठ जाएं? कोई ऐसे है? अच्छा, कोई नहीं। सभी ने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है कि ग्रस्त में रहते भी पावन बनना है। तुम्हारे लौकिक पाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि रामराज हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीता राम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं, इस समय का सुख काल विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहां सुख तो है ही नहीं। थोड़े दिन पहले एक माता मिली और लगती बड़ी सुंदर थी, आयु तो बड़ी थी 60 वर्ष की, परंतु ऐसे लगता था जैसे कि 40 वर्ष, और कानों में हीरे, हाथों में हीरे, तो आप समझ सकते हैं को बड़ा उसका रौनक थी। परंतु फिर कहानी बैठकर सुनाई, इतना दुख की कहानी, इतनी दुख की कहानी, तो कैसे आर्टिफिशियल स्माइल करके लोग चल रहे हैं संसार में, अंदर उनके कितना दुख भरा हुआ है, जैसे कि उसके ऊपर तरस पड़ा था। फिर तो कुछ ज्ञान सुना, कुछ फिर आगे भी बढ़ी, परंतु सत्युग में कोई भी दुखी नहीं, और कलयुग में चेहरा कैसे भी हो परंतु अंदर कुछ न कुछ दुख अवश्य ही समाया हुआ है। और बाबा आकर के सब दुखों को हरते हैं और सुख देते। तो बाबा कहते हैं, यहां सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, वहां कंस आदि कहां से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। बाबा की मुरली बहुत मीठी है, ज्ञान अमृत है, आंख खोलने वाली है, परंतु साथ ही साथ बाबा की श्रीमत की मुरली है। बाबा हर मुरली में हमें डायरेक्शंस देते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देती है। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटा बनंती, कितने जाकर डिससर्विस करती हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देती हैं। भागंती में भी कई प्रकार की कैटेगरीज है। कोई अपनी कमजोरी समझ करके सोचती है कि हम चल नहीं सकेंगे, और कहीं फिर औरों को दोष देख करके चले जाते, और तीसरा तो बाबा के ऊपर कलंक लगाते और जाकर फिर डिसर्विस करते। तो बाबा कहते कि उनका भविष्य क्या, पिछारी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा, ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहां तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनती हो, पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहां तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो, मर्तबा में तो फर्क है ना। ये भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो पद कम हो जाता। हम बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विक्रम नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजा मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए, यहां रहने वालों से भी जो घर ग्रस्त में रहती हैं, सर्विस में रहती हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब है, 8 आना व रुपया भेज देते, और जो भल यहां 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता। उसके पास है ही 2 रुपया, उसमें से 50% बाबा को दे दिया 1 रुपया, तो बाकी अपने लिए तो मुश्किल से। तो उसकी हिसाब बाबा देखते हैं, किसके पास 10,000 है, उसमें से 1,000 दिया, 100 दिया, तो दोनों का बराबर। तो बाबा कहती हैं कि एक तो है देने की बात, परंतु दूसरा फिर है गरीब कोई पाप कर्म नहीं करते, पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, कितनी बातों का हिसाब बाबा ने बताया, देते क्या है लेते क्या है, सब बातें। और फिर बाबा कहते, हमेशा खीर खंड होकर रहो, अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं, कोई के नाम रूप में भस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल दी थी, ऐसे कर्म करवा दी थी जो पता भी नहीं पड़ता। पांच विकार एकदम सिर मुंड लेते। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसे न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़ी किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरअहंकारी है। बाबा की निरअहंकारी महावाक्य बहुत प्यार से बाबा ये कहती हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। भगवान अपने बच्चों को कहे कि हम ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कितना निरहंकारी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहती हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। दिए अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। बाबा डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें और आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और इस एक ही टॉपिक पर ध्यान देवे, आत्मस्मृति देही अभिमानी स्थिति। मुझे लगता है कि 90% तो जो कमजोरियां है वो चली जाती। बस देह अभिमान को तोड़ना। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए, जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते अपने भविष्य के लिए। खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूं, हमने कितनों को सुख दिया। सुख देने के अनेक तरीके हैं। मधुबन निवासी जिस तरह से सेवा करते हैं वो सबको सुख दे रहे हैं, चाहे भंडारे में, चाहे डाइनिंग रूम में, चाहे कार्पेंट्री वाले हो, चाहे बिजली वाले हो, सबका इस हिसाब में आ जाता है, सबको सुख मिले। बाबा के बच्चे जो भी आए हैं वो इतना प्यार से रहे, इतना आराम से रहे, जो सुखी रहे। तो बाबा सबके लिए कह रहे हैं, एक प्रकार की सेवा नहीं, अनेक प्रकार की सेवाएं। हमने कितनों को सुख दिया है, बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितने ज्ञान की डांस करते थे, चातुर्य बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चातुर्य के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। चातुर्य खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलना है। अपने मत पर चलकर बदनामी कर देती है तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाती है। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहती है लेकिन समझती नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहां अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा की कि वो आकर मूत पलीते कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार निराकार। शिवलिंग के बदले अकाल तत्व नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। संसार की हालतें देख करके यही संकल्प आता, बाबा थैंक्स, आपने पहले से ही बता दिया ताकि हम अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर चुके हैं या कर रहे हैं। कौन समझता है कि जो भी सीन में बाबा अब विश्व के सामने आ रही, बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रखा। ट्रांसलेशन में शायद थोड़ा टाइम लग रहा, वो धीरे धीरे बहनों की तरफ हाथ उठा रहे हैं। कौन समझती है कि जो अब सीन चल रही है उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमें तैयार करके रखा है। अभी हाथ उठा रहे हैं जी, तो बाबा को कितना ना दिल से थैंक्स दे रहे। अचानक कोई बात होती तो भी हम कहेंगे बाबा आपने हमें पहले ही बता दिया। विश्व के लिए तो हैरानी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा। अब बाप तुमको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कलप कलप हम ऐसे करेंगे जिसे नीच पद पाया। बात कहती है मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, कुछ मतलब से नहीं। मुझे कुछ अभी उसकी प्राप्ति हो, मान शान नाम नहीं, बस बाबा के प्यार में जो कर सकते हैं, जैसी भी अनेक आत्माओं को बाबा के नजदीक ला सकते। सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां न कहां से घुस कर आएंगे, वो देख रही है, चांस ढूंढ रही है। सेंटर्स के हेड्स को बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरअहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरअहंकारी है। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। गलती भी हो गई बाबा प्यार से बैठ समझाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते हैं, ढेर बची हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। अभी मधुबन में 21,000 ब्राह्मणों की सभा थी और जो सेवाधारी है, समर्पित मधुबन के भाई बहन है, उसकी गिनती अलग। ये जो आए थे बाबा मिलन के लिए चाहे सेवा में, आप सोचो बाबा ने उस समय तो हिस्ट्री हॉल में कितने बैठ सकते, 200 आराम से, 300 बहुत स्क्वॉश्ड। तो उस समय बाबा के सामने तो सभा इतनी ही थी, उसी को ही कहते थे बहुत बड़ी सभा है हम लोग। और बाबा उस समय भी वहां की सभा नहीं देख रहे, भविष्य की बात सुना रहे। ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते, कोई गफलत नहीं करो। यहां पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो, न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देती हैं। तो ट्राइब्यूनल के सामने ऐसी न कहे आपने तो बताया ही नहीं, तो बाबा पहले से ही सावधान करते। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लेते बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में खीर खंड होकर रहना है। दूसरा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान, सेकंड में देही रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते। कल किसी ने प्रश्न यही पूछा था कि जिस समय बहुत दर्द होता, भोग ना होती तो क्या किया जाए, तो बाबा ने आज बहुत क्लियर उत्तर दिया और कल कई एग्जाम्पल सामने आए। बाबा की जो अंतिम घड़ी थी उसमें पहले चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था, फिर कुछ क्षणों के बाद वो सीन समाप्त हुई और बाबा का चेहरा बिल्कुल हल्का हो गया। तो फिर जब बाबा से पूछा गया वतन में कि बाबा आपकी स्थिति क्या थी, तो बाबा ने कहा कि पहले कर्म भोग और कर्म योग का युद्ध चला और फिर कर्म योग की जीत हो गई। और जब हम लोगों ने बाबा का चेहरा देखा 20 जनवरी को, आगरा से 19 को निकल के 20 सवेरे पहुंचे, तो उस समय बाबा का चेहरा इतना सुंदर था दिल को जैसे कि फूल। तब तक गुलाब के फूल जयपुर से आ चुके थे, तो सब आजू बाजू बाबा के पास लाल गुलाब के खुशबूदार फूल थे, परंतु उसमें बाबा का चेहरा भी ऐसे ही, कुछ उसमें दर्द का अंश मात्र भी नहीं नजर आया, बस हर्षित। तो बाबा कहते हैं कि अष्ट रत्न विजय कहलाते हैं इस बात में, और बाकी 108 नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। अभ्यास अभी से ही ये हमारा कितना है, मैं आत्मा न्यारी शरीर न्यारा, बिल्कुल अलग। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। जितना ऊंचा व्यक्ति उतनी उसकी निर्माणता। तो आज शॉर्ट स्ट्रॉन्ग मुरली के बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है उसका प्रमाण क्या है। मम्मा की मुरली की विशेषता, कोई भी एक टॉपिक को लेकर के मम्मा अच्छी तरह से उस एक बात को स्पष्ट करती। श्रोमणी गीता में जो भगवान वाच्य है, हे बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं, ये भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में काली नाग मैं हूं। इसीलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग, तो इससे सिद्ध है कि अगर सर्व सांपों में केवल काली नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। उन्हों की कहानियां उठा करके मम्मा उन्हों को समझा रही। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, और फिर कहते जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उनका मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सब तरफ कौन है, सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे हो सकता। गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं, इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। जो भक्ति में कहानियां है, कहावत है, उसी को ही मम्मा ने उठाया। और दूसरी टॉपिक निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो उसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। परमधाम और साकारी दुनिया का महान अंतर, बिल्कुल फर्क। ऐसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है, तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहती है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनिया भी लोग तो समझती है, परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको मम्मा ने नाम दिया है निर्वाण धाम को, रिटायर्ड होम कहते हैं। रिटायर करना है तो परम धाम में वो रिटायरमेंट का अनुभव कर सकते। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहती हैं, और ये है साकारी दुनिया जिनकी दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कलप सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। लगता ये दुनिया बहुत बड़ी है, परंतु और ऊंची दुनिया स्वर्ग किसको कहते, वो उसका भी बता दें। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हो, क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। बहुत लोग ये कलंक देते हैं भगवान सुख दुख देता, या बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने तो ऐसी संसार बनाया है जहां पर आजकल दुख है, तो बाबा कहते हैं नहीं, ये मेरा काम धंधा नहीं। अब ये जो दुख अशांति की दुनिया है, तो मनुष्य आत्माएं अपने आप को मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। भगवान कौन, भगवान क्या संसार बनाता, हम कौन, ये सब बातें को जान करके फिर बुद्धि को ठिकाने लाना है। बाकी ऐसे ही जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां एक ही बात का फर्क, वो भी संसार वो भी दुनिया स्वर्ग, फर्क क्या, वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण विकार ही नहीं। तो उसके साथ आपने बहुत अच्छी और बात जोड़ी है, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। पवित्रता और कर्म बंधन दोनों बातों का कनेक्शन, पवित्रता है तो कर्म बंधन फिनिश, पवित्रता नहीं है तो फिर कर्म बंधन शुरू। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहती है। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। और अज्ञात इशारा
की बात, मिडिल ईस्ट का समाचार सुना कर पूछते हैं, ठीक है, कि लोग भी करेंगे ना जो जिन्होंने शरीर छोड़ा है या जो कुछ।
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ वासनमुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। कहीं होते हैं अपने मन में पक्की बात करके आती है फिर पूछते हैं राय क्या है, तो फिर उनको बताते हैं तो उनको अपनी बात तो पक्की होती है तो वे हमने के लिए तैयार नहीं होते। परंतु बाबा कहते हैं कि निराकार साकार बाबा को सामने रखो कि बाबा क्या सोचते, बाबा क्या कहते, मुरली में हर प्रकार के उत्तर मिलते। तो यदि वो बाबा के सामने हम ये सोचते कि बाबा ने क्या कहा है तो फिर तो सहज ही निर्भय होकर निश्चिंत होकर के हम आगे बढ़ सकते। अभी सब तरफ से यही प्रश्न आ रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में अपने भाई बहने हैं वो सब ठीक है, तो हाँ अभी तक का तो जो समाचार आ रहा, चाहे दुबई का, अबू धाबी का, कतार का, बहरीन का, इन सब कुवैत का, इन सब स्थानों से तो यही समाचार है कि बाबा के बच्चे तो सेफ है। बाहर में तो बहुत कुछ चल रहा है, कहाँ कहाँ स्कूल्स बंद हो गए हैं और कहाँ कहाँ बार बार सायरन बजती है तो कारोबार छोड़ के कुछ सेफ्टी के स्थान पर भागते हैं। इसराइल के भी बाबा के बच्चे मधुबन बैठे हुए हैं, तो वो भी ताजा ताजा समाचार बताते रहते हैं जैसे उनको मालूम पड़ता। तो सब तरफ बाबा के बच्चे तो सेफ है, किसी एक का भी समाचार नहीं आया है जो कुछ ऐसी बात हुई हो। और फिर बाकी जो बाबा के बच्चे यहाँ से निकल चुके थे और इन देशों में पहुंच गए थे, तो बहुत करके उनको भी आगे और जाने का उनका रास्ता खुल गया। परंतु एक दिन रास्ता खुलता, दूसरे दिन कहाँ बम गिरता तो रास्ता बंद हो जाता। तो कोई बात का भरोसा नहीं है। अभी और आगे देखो क्या होता ड्रामा के अंदर। परंतु जो बॉम्ब्स गिरे थे बहुत करके जहाँ ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोल का सारा कारोबार चलता वहाँ पर थे, तो रेजिडेंशियल एरिया नहीं। फिर अभी उन्होंने बैंक्स और एयरपोर्ट्स पर भी चालू किया है, परंतु वहाँ पर भी अपने बाबा के बच्चे तो ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं आई। तो कहीं सोचते हैं कि हम भागे, और फिर बाबा कहते हैं कि जब तक रह सकते हो रहो, शांति से रहो, बाबा की याद में रहो, श्रीमत पर चलो, परंतु आपकी सेफ्टी बाबा के हाथ में, जबकि हम निर्भय और निश्चिंत रहते। यदि बाबा आज्ञा देता है बस सभी समेट के भारत आ जाओ, तो वो जब बाबा कहेगा तो आपको बता देंगे, परंतु अभी तक तो बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। तो बाबा के बच्चे औरों को भी सहयोग दे रहे हैं जो उनके देश के थ्रू पास करके और आगे जा रहे हैं अपने देश में। और बाकी आपने तो देखा कि कुछ तो पहले वाले ही बैठे हैं, परंतु उसके अलावा भी बाबा के बहुत सारे बच्चे विश्व के कोने कोने से आकर पहुंचे हैं। तो युद्ध शुरू होने के बाद 2-3 सप्ताह के बाद भी उन्होंने ऐसे फ्लाइट्स पकड़ी जो थोड़ी लंबी थी, परंतु मधुबन पहुंच गए। परंतु मधुबन में भरपूर होकर के फिर कहाँ जाना है? उन्हीं देशों में जाना है जहां से आए हैं। परंतु उस विश्वास से कि बाबा मदद जरूर करेंगे, जो कुछ भी हो रहा है हमारा हाथ श्रीमत के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो सब ठीक हो ही रहेगा। तो ये है वहां का समाचार। परंतु अभी 2 मैसेजेस आए, एक भाई दूसरा शीलू बहन जी, तो दोनों ही कहते हैं कि 10 मिनट हम योग करें विश्व के लिए, एक स्थान के लिए नहीं। एक स्थान के लिए करेंगे तो दूसरा स्थान रह जाएगा, परंतु योग करें विश्व के लिए। सूर्य बाप के समान ऊपर चले जाओ, बाबा के साथ वहां ही ठहरो, और वहां से बाबा सकाश सबको पहुंचाएंगे। जी, बाबा की याद में 10 मिनट के लिए बैठते हैं।